ऑस्ट्रेलिया में अभी कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पाया भी नहीं गया था कि कोरोना के नवीनतम संस्करण ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया में नए ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे और इसी के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंताएं भी। हालांकि कोरोना के इस नए संस्करण के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका संचारण पिछले सभी संस्करणों से कहीं ज़्यादा है। अभी तक ओमिक्रॉन संस्करण से किसी मरीज की मृत्यु की भी खबर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, जहां से माना जा रहा है कि इस नए संस्करण की शुरुआत हुई, वहां अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने भी नए संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। विश्व के बाकी देश भी मौके की गंभीरता को समझते हुए ओमिक्रॉन के खिलाफ यात्रा नियम सहित सुरक्षा कदम उठा रहे हैं। इस बीच फाइजर की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया कि फाइजर की बूस्टर खुराक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। फाइजर और उसके सहयोगी बायोएनटेक ने परीक्षण किया कि वैक्सीन निर्मित एंटीबॉडीज प्रयोगशाला में ओमिक्रॉन को कितनी अच्छी तरह से बेअसर कर सकती है। इस परीक्षण के बाद पाया गया कि दो खुराक के बाद इसने ओमिक्रॉन को काफी कमजोर किया और एक बूस्टर खुराक ने एंटीबॉडीज के स्तर को 25 गुना बढ़ा दिया। फाइजर के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी मिकेल डॉल्स्टन परिणामों से खुश हैं।
We are very pleased to share that our released laboratory data show that people vaccinated with a third boost generate a robust level of neutralizing antibody against a new highly mutated Omicron variant.
दवा कंपनियों का कहना है कि दो खुराक अभी भी संक्रमण में गंभीर बीमारी से बचा सकती हैं। टीका निर्माता ये भी कह रहे हैं कि वो कोविड के खिलाफ खुराक में बदलाव भी कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ओमिक्रॉन के खिलाफ एक अलग खुराक बनाई जा सके।
To be certain to have all options on the table as we come out in March to April, we are full steam ahead in planning for the Omicron variant vaccine and are continuing to make progress day by day. Week by week, and expect to be in regulatory filing for emergency use authorization in March and start rolling it out possibly during that month.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाइजर से आई इस खबर का स्वागत किया है।
I have some good news this morning. The Pfizer lab report came back saying that the expectation is that the existing vaccines protect against Omicron, but if you get the booster, you're really in good shape. And so that's very encouraging. That's the lab report. There's more study going on. But that's very, very encouraging.
ताजा वेरिएंट के दुनिया भर में फैलने से पता चलता है कि ये COVID-19 महामारी पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस संस्करण पर काबू पाना जरूरी है, इससे पहले कि ये विनाशकारी बने।
Even though we still need answers to some crucial questions, we are not defenseless against Omicron or Delta. The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. Don't wait. Act now. We're running out of ways to say this, but we will keep saying it.
दक्षिण अफ्रीका के एक स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उनके देश में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और कोरोना का नया संस्करण मुसीबत बना हुआ है। वहीं एक अस्पताल की डॉक्टर वसीला जसद का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वो कहती हैं,
It's certain that Omicron is driving this resurgence. And it's quite likely that it is highly transmissible, although we still await some of the data. But looking on the daily increases, the high reproductive number, the week-on-week increases in cases and hospital admissions, it's very likely that this is a highly transmissible variant that's responsible for the spread.
वो ये भी कहती हैं कि अस्पताल में भर्ती अधिकांश लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है। पिछले महीने के अंत में सामने आए ओमिक्रॉन के असामान्य रूप से कहीं ज्यादा म्यूटेशन होते हैं और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी आसानी से फैलता है, क्या इसकी वजह से बीमार पड़ने वाले मरीज ज्यादा गंभीर होते हैं और क्या पुरानी वैक्सीन इन पर असरदार है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि क्योंकि कुछ लोग टीका नहीं लगवा रहे, इसलिए उनकी सरकार हमेशा के लिए लोगों के दैनिक जीवन पर कोविड-19 प्रतिबंध नहीं लगा सकती।
I want to be absolutely clear with you. I don't believe we can keep going indefinitely with non-pharmaceutical interventions. I mean restrictions on people's way of life, where just because a substantial proportion of the population still sadly has not got vaccinated. And I think we're going to need to have a national conversation about the way forward and the other things that we can do to protect those who are hard to reach, who haven't got vaccinated for one reason or another, who may have medical reasons why they can't get vaccinated, other ways of protecting them.
आपको बता दें कि इंग्लैंड में फिर से सख्त कोविड-19 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। लोगों को घर से काम करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और ओमिक्रॉन कोरोना वायरस संस्करण के प्रसार को धीमा करने के लिए वैक्सीन पास का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। अपनी भाषा में कोविड से जुड़े स्वास्थ्य और सहायता उपायों के लिए www.sbs.com.au/coronavirus पर जाएं। SBS न्यूज़ से एसएम अल गालिब की रिपोर्ट को हिंदी में पेश किया है विकास अवाना ने।